लेकर के भाग रहे हैं। बलदेव जी के बाहर क्रोध है, फल और निकल लिखा है। इस दुष्ट को आजमाना हमारी बहन के लिए क्या
हम छिड़क नहीं आप आओगे हमारे हिजरत मारे से इसलिए बेटा वैसे इनकी ऐसे ठीक है बेटा वैसे राज्य बता बता रहा है इनकी ऐसे ऐसे इनकी ये देखो और बोलो ना आप ना कहते थी देखी मेरा एक लगियन समेत एक रखल बी बोरा जहन काके एक अतियना हु पत्थर मार रे रब्बे रब्बे सच्ची मेरा ओ सुन हजी एना हम कह बे हूं बड़ को जेड़ा म ई बेया तो ना इकी बकी बकुक नु ए मा वे दी ए सुख न सुब नु इन दी बाबा देख रख ना बे मत बस मैं चुपका चबक मुड़ी पत्ते ने लापता सुर बजना बस ये अगल बो ओक ना बो कभी लाप ये कभी मिलाते ही ना मैं पताखे ब्रश कभी मिलाते कतरो तब लगी ना रब थरब पताखे चाब कतरो तब ना लगे इतनी मर्ची में है इतनी मेरे को ना पताखे कॉल बोलने का इंद्रन दूध न थे मावे थे सतीन सतीन ओ अपने हराती बातें लगता था ऐसे ते दाली को फिर क्यों प्रवासी में चल कर चल खबे लाप वो ना खत ऐसे तखरप न लगे वो लो ना पे थे मेरा पीने में रहते हैं मैं चल कर चल दूध लेते हैं यार गले से लग ऐसे पाइप रखो हमने सब इतना बेचीज हूँ ये जन्नत मारी है लाप
I'm not
ये भी एक गौण कारण
है।
एक मूल कारण यह था एक सरोवर वहाँ पर एक बार कृष्ण गोल डालने का और दो कथा लोग तो राधिका जी से कृष्ण के पास उनकी गोदी में हाथों को पर इस प्रकार से रखते दिन राधा जी के मुख कमल को देकर के कमल कमल करके उसके अंदर में मधुपान करने के लिए ये हाथों से ऐसा ऐसा कर रहे हैं डर गई मधुमंगल ने देखा। मधुमंगल कहीं से एक लड़की आ गया और घरों को इस तरह से बहुत दूर जंगल में और आकर के बोला मैंने सुगन को ऐसे जगह दबा दिया जो वो कभी जीवन में नहीं राधा जी बस इतना ही सुना जो मधुसूदन को मैंने बता दिया है और जीवन भर नहीं आएगा। कृष्ण की गोदी में है आलिंगन पास में बद्ध रखी है और वो ऐसा प्रेम मुझे तो नहीं हुआ और इससे पहले से मधुसूदन चला गया ये हमारे मिलन में और कमाल कमाल आकाश के लड़ती हैं कृष्ण समझ कर इसलिए इनको मैं स्थान इनका दुख मुझसे सहन नहीं और पड़ेगा नहीं रहने से वो समझेंगे हमारा नियम है उसमें से बढ़िया कृष्ण उन्होंने उद्धव से कह रहे हैं उद्धव जाओ हमारे विधि संक्षिप्त पिताजी को सांत्वना देंगे एक बात करना असल में तो उनको बात करना था गोपियों से लेकिन तो साहस पहले नहीं कर सके इसलिए माता पिता को जोड़ दिया कहते हैं कि देखो जिन्होंने हमारे लिए सर्वस्व छोड़ दिया है मन मना भव जिन्होंने अपना मन संपूर्ण रूप से निर्णय ले लिया है मेरे लिए जितनी है मरती हैं उन्होंने जो चीज छोड़ना चाहिए उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया दुष्टज्ञ जो आज्ञ पत्र है उसको भी मेरे लिए छोड़ दिया मतगत प्राणा हमारे अपने मन को हमारे में कैसे एक उदाहरण सुनेंगे अभी तो समय हो गया अभी एक चिंतन करें उद्धव जी जाएंगे उद्धव जी माने मथुरा जाएगी कहाँ वृंदावन में देखने के लिए वहाँ है कृष्ण जानते ही हैं।
और जब कृष्ण
मथुरा है तो कृष्ण के बिना मथुरा वृंदावन की क्या दशा हो रही है, उद्धव जाकर के देखो, मैंने मथुरापुरी देख रही है, उसी का वर्णन गोपियों का कृष्णा भी रहा है। ये उद्धव जो सबसे प्रेमी प्रेमातुर भक्त है, गोपियों की चरण भूमि के लिए ललकते हैं। अगले दिन हम कल कथा समाप्त करने पर मैं मधुर इन समापयति, थोड़ा सा मधुर रस की पूर्ण देने, और कभी यदि गोविंद जी की इच्छा होगी कि मैं जरा कथा सुनूंगा और अपनी, और यदि खेच करके मेरी चोटी यहाँ लाएंगे तो गोविंद जी को ऐसी अद्भुत कथाएं सुनाऊंगा जो ये प्रसन्न हो जाएंगे, रोएंगे, कल्पेंगे गोपियों के लिए। उपासना सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ते हैं इनकी चरण भूमि के लिए। इसलिए श्रीमद् भागवत में कृष्ण की वंदना न करके राधा जी की और गोपियों की वंदना की गई। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ कृष्ण को प्रकाश करने के लिए नहीं है, गोपियों को प्रकाश करने के लिए है। राधिका इत्यादि का चरित्र यदि हम कहें, एक छोटा सा सांवला लड़का था, बंसी बजाता था और घर घर में चोरी करता था गोपियों के दधी को और माखन को चोरी करता है, गायों के पीछे चलता है, ये कौन है? राम है? नृसिंह भगवान है? न बराह देव है? कौन है ये? तो बाध्य होकर के आपको कहना पड़ेगी ये कृष्ण कन्हैया है। एक परोक्षवाद होता है ना, एक परोक्षवाद होता है और एक होता है प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्ष से श्रीमद् भागवत इत्यादि शास्त्रों में परोक्षवाद का बहुत ही सुंदर यह किया गया है। कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं परोक्ष रूप में बतलाई गई हैं, क्योंकि भगवान को ये प्रिय है, इसलिए श्रीमद् भागवत में परोक्षवाद है। कृष्ण को भी भागवत में इस प्रकार से दिखलाया गया है, मानो वो ब्रह्म न हो, ब्रह्म कहीं चोरी करता है, कभी गोपियों के मक्खन को चुराएगा, झूठ बोलता है कृष्ण की, ऐसी कोई बात ही न झूठी हो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने तो यहाँ तक कहा, कृष्ण लबार है, धूर्त है, उसकी बात हम नहीं मानते, कोई भक्त है यार उसकी बात हम मानेंगे? तो कृष्ण का नहीं, गोपियां भी ऐसे कहती हैं, धूर्त इत्यादि सब उनको कहती हैं। तो ये भागवत में परोक्ष बात है, इससे कृष्ण को ये बहुत प्रिय है। गोपियों की सारी महिमा श्रीमद् भागवत में दी गई है। द्वारका में कहीं रास होगा, न मथुरा में होगा, न अयोध्या में होगा, कहाँ होगा रास? ये वृंदावन में ही होगा रास। गोपियों के कहीं निपुट छपट छिटक गए तो कृष्ण दौड़ करके ला करके उनके चरणों में बांधेगा, गोपियां थक गई हैं उनके पसीने छोएंगे, पूछेंगे वो कृष्ण। ये भागवत की ऐसी लीला है, इसीलिए श्रीमद् भागवत को महापुराण, अमल पुराण, शब्द प्रमाण इत्यादि कहा गया है। इसी भागवत की कथा हम आरंभ कर रहे हैं। अंत में बलदेव जी ये स्थापन करके चले गए, तब से गोविंद जी की सेवा ये हो रही है अब तक, और राधा जी उनके पास में है। कृष्णचंद्र जी ब्रज की लीलाओं को किया, मथुरा की लीला संपन्न की, और उसके बाद में द्वारका चले गए, महाभारत युद्ध इत्यादि हुआ, और उसके बाद में ऋषियों के हिसाब से सांब के पेट से एक मूसल भी निकला जो कि जदवंशियों के वंश के ऊपर से ध्वंस का कारण बना। उसी से सरकंडे निकले और उसी से लोहा का एक मछली के पेट से घिसा हुआ बाण का अंतिम भाग निकला, और उसी बाण से ऐसा मालूम हुआ कि वही बाण कृष्ण को लगा और गोलोक पधार गए,
और जितने जदवंशी लोग थे परस्पर सरकंडे से लड़ लड़ करके मरे। किंतु इस चीज को इस रूप में समझो, इस रूप में मत समझो जो सब लोग लड़ करके मर गए। इस चीज को समझो, कृष्ण चाहे एक सेकंड के अंतर्गत में अखिल विश्व ब्रह्मांडों को ध्वंस करके नए नए करोड़ों करोड़ों लोगों की का सृजन कर, चाहे एक सेकंड के अंतर्गत में अखिल विश्व ब्रह्मांडों को ध्वंस करके नए नए करोड़ों करोड़ों लोगों की का सृजन कर सकते। वैज्ञानिक लोग अंधे होते हैं, आज के विशेष करके अंधे विचार शून्य होते हैं, ऐतिहासिक लोग नास्तिक होते हैं। उन लोगों को यह विश्वास नहीं था कि इस एक सूर्य के अतिरिक्त कोई दूसरा सूर्य है और ब्रह्मांड अखिल हजारों लाखों करोड़ों हैं। यह उनको पता नहीं था। आज सुनते हैं, कल परसों मैंने सुना, जो बहुत से वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक पंपलेट बाहर किया, विचार किया और उन्होंने देखा कि एक और सूर्य लोक है, उसमें पृथ्वी है, उसमें जीव है और क्या है। अभी एक दूसरे सूर्य को अभी देख रहे हैं, करोड़ों करोड़ों सूर्य हैं, एक दो नहीं, और ये करोड़ों करोड़ों सूर्य और ब्रह्मांड एक भगवान के लोम कूप में है, एक एक लोक में इतना है। हमारे शास्त्रकारों ने इसको बहुत करोड़ों वर्ष पहले ये सब वेद उपनिषदों में साबित कर दिया है। जो करोड़ों करोड़ों वर्ष कह चुके हैं पहले, अब ये लोग थोड़े 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 रूप में देखते हैं। आत्मज्ञान इनको नहीं, ये आत्मा क्या है शरीर को समझते हैं। किंतु जो आत्मा निकल जाने के बाद में शरीर रह जाता है, वो आत्मा क्या है आज का कोई भी वैज्ञानिक नहीं कर सकता। कोई एक ऐसा है जो लाखों जगत के वैज्ञानिक और इंजीनियर और डॉक्टर मिलकर के बुढ़ापे को एक सेकंड के लिए रोक दे, मृत्यु को रोक दे, आत्मा को जाने से रोक दे, वो आत्मा क्या है और उस आत्माओं का परमात्मा जो गोविंद जी हैं वो कैसे हैं, इन लोगों के समझ से बाहर है। इसलिए इन लोगों पर विश्वास न करके अपने वेद शास्त्र इत्यादि पर हम लोगों को विश्वास रखना चाहिए। तो ये कृष्ण जो पर ब्रह्म है, समस्त अवतारों के अवतार ये गोविंद जी हैं। जब कृष्ण की लीला अप्रकट हो गई, कृष्ण तो वो बतला रहा था, जो कृष्ण न तो कहीं गए, न जदवंशियों में लड़ाई हुई, न वो मरे। कैसे? ऐसे जो विश्व ब्रह्मांड की रचना करने वाले भगवान हैं, भला वो मर सकते हैं? मर नहीं सकते। तो क्या हुई बात? चक्रवर्ती ठाकुर जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने एक उदाहरण दिया। एक मदारी था, उसकी नवजीवती स्त्री, और वो किशोर था, उसकी स्त्री भी बड़ी किशोर थी, और उसको दो बच्चे थे, एक 8 वर्ष का, एक 9 वर्ष का, बड़ा सुंदर सुकांत और बड़ा शरीर पुष्ट। एक राजा के राजभवन में गया और वहां पर उसने खेल दिखलाई। खेल क्या था? एक रस्सी, दो पोल को ऐसे खड़ा करके उस पर रस्सी को लेकर के और उसको बांध दिया और नीचे जमीन पर गाड़ दिया, खूटे उसमें रस्सियों को बांध दी। बस पोल के ऊपर में वो रस्सी थी बहुत पतली और उसके ऊपर में उसकी जो जुआ स्त्री थी वो दुबली पतली बहुत सुंदरी, वो उसके ऊपर में एक घड़े के ऊपर एक घड़ा, उसके ऊपर में एक घड़ा, उसके ऊपर में तीसरा चौथा घड़ा लेकर के चढ़ गई और चढ़ करके एक बांस ले लिया और उसके ऊपर में नृत्य करते 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 उधर में जाती और उधर से फिर लौट करके घूम करके इधर आ जाती। क्या मजाल ये उसका ऊपर से गिर गया। ऐसी ऐसी बहुत सी लीलाएं की। जब उतरी तो रानी ने अपने नौलखा हार उसके गले में दे दिया, बहुत ही कीमती। जब दे दिया तो उसके दोनों पास में लड़के जो खड़े थे 8 और 9 वर्ष के, तलवार यहां म्यान में रख करके झुकाए हुए थे, जैसे पंजाबी सिख लोग रखते हैं اس نے وہ لڑک کر کے اور میاں مجھے دے دے میاں مجھے دے دے دونوں لڑنے لگے. جب وہ جب لڑنے لگے تو اس نے گلے سے ہار ایسے نکال کر کے ایسے چھوڑ دیا اور دونوں اس کے لیے لڑنے لگے. اب وہ لے کہ وہ لے تو جبکہ ہونے لگی تب وہ دونوں برابر ایک نے دیکھا جیسے ایسے تو دے گا نہیں, اس نے مین سے تلوار کھینچی اور دوسرے نے بھی کھینچی اور ایک ساتھ ہی ایسے تلوار لگائی کہ اس کا گلا کٹ گیا اس کا دونوں اس بچے گر گئے لہو لوہان ہو کر. اتنے میں میاں دوڑی, ارے ہمارے بیٹے دونوں گئے ختم ہو گئے. ہائے بس ان ایک کی تلوار لے کر کے میاں نے گلا سے کاٹا اور دوسرے جو پتا جی تھا وہ دوڑ کر کے آیا, وہ ہمارے بچے اور ہماری پتنی دونوں چلے گئے, اس نے بھی اٹھایا اور گلے کاٹ. ایک سیکنڈ کے اندر میں یہ گھٹنا گھٹی.